आप सबका स्वागत है गोविंद कुंड में।
हरे कृष्णा। मैंने आपको रास्ते पर वो जगह दिखाई ना, गोपाल मंदिर की, दिखा ना सब डॉक्टर व्हाइट मंदिर। तो उसकी कहानी ऐसी है, पहले मैं इसकी कहानी बताऊंगा आपको, फिर आपको कल लिख लगेगा। ये श्री गोविंद कुंड है और ये श्री गिरिराज गोवर्धन है। इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत इतने पास में आपको यही दिखाई पड़ेगा। यू विल नॉट बी एबल टू सी गोवर्धन एज क्लोज एंड एज बिग मोर देन दिस प्लेस। तो इस जगह पर इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। संक्षेप में बताए तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा की, इंद्र की पूजा नहीं की। तो इंद्र ने 7 दिन 7 रात वर्षा किया और भगवान ने गिरिराज को उठाया और इंद्र को डिफीट कर दिया। फिर इंद्र ने सुरभि का आश्रय लिया और भगवान से माफी मांगी, भगवान ने उसको माफ किया। तो इंद्र ने सोचा कि अब कुछ करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो इंद्र ने भगवान को कहा कि हम आपका अभिषेक करेंगे। तो आकाश गंगा से पानी लेकर आए, इंद्र के वाहन, इंद्र का कैरियर ऑफ इंद्र ऐरावत द एलिफेंट, वो आकाश गंगा से अपने 5 सुंड में भरकर पानी लेके आए। यहाँ पर एक कुंड में जमा किया, उसका नाम है ऐरावत कुंड। अप्सराओं ने भी पानी लाया और 5 कुंड में पानी बनाया, उसका नाम है अप्सरा कुंड। फिर ब्रह्मा ने 108 कुंड बनाए और इस सब कुछ खत्म हो गया है। इस तरह से सभी देवताओं ने अपने अपने कुंड बनाकर जल लाकर यहाँ स्टोर किया और सूर्य ने अपने दूध से और सभी देवताओं ने सब जल से भगवान का अभिषेक किया। इस जगह पर बैठकर किया और यहाँ पर जो जल तैयार हो गया अभिषेक के बाद, उससे बना है गोविंद कुंड। तो सही चरणामृत कुंड यही है, भगवान का शरीर का जो अभिषेक करने के बाद, जो चरण धोने के बाद, शरीर धोने के बाद जो पानी जल इकट्ठा हो गया, दूध और पानी मिलके, वो अभिषेक का जल है गोविंद कुंड। और इसके बाद इंद्र ने भगवान को गोविंद के नाम से घोषित कर दिया। आई डिक्लेयर यू एज गोविंद। गोविंद का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, भूमि के स्वामी और गौ के स्वामी, तीनों मिलकर गोविंद बनता है। इस तरह से श्री गोविंद कुंड में भगवान का चरणामृत यहाँ पर विराजमान है। और आगे जो 2 मंदिर दिखते हैं आपको, वो राधा गोविंद का मंदिर है। यहाँ पर ही राधा गोविंद के मंदिर की मूर्तियां वज्रनाभ ने स्थापन किया। वज्रनाभ कौन है? कृष्णा के पुत्र प्रद्युम्ना, उसका पुत्र अनिरुद्ध, उसका पुत्र वज्रनाभ। वज्रनाभ को राजा परीक्षित ने ब्रज का राजा बनाया था, तो उसने यहाँ पर गोविंद की मूर्ति स्थापन कर दी। ठीक है। और गोविंद कुंड के किनारे में बहुत पवित्र स्थान है, वहां पर वल्लभाचार्य की बैठक भी है। यहाँ पर वल्लभाचार्य ने बैठकर भजन किया है और गोविंद कुंड के किनारे में बैठकर माधवेंद्र पुरी नाम के भक्त हुए हैं। वो गौलोक वृंदावन के कल्प वृक्ष के अवतार है। इज द इंकार्नेशन ऑफ द कल्प वृक्ष इन गोलोक वृंदावन, माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी के शिष्य ईश्वरपुरी है और ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी। कल ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस था, यस्टरडे वाज़ द डिसअपीयरेंस डे ऑफ ईश्वरपुरी। तो माधवेंद्रपुरी वहां पर बैठकर भजन कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया, भोजन नहीं किया उन्होंने। तो स्वयं भगवान बालक बनकर उनके पास में आए। उन्होंने कहा कि माधवेंद्रपुरी, मैंने यहाँ पर जो औरतें कपड़ा धोने को आती है गोपियां, उनसे सुना है कि आप कुछ खाते पीते नहीं हो, खाली भजन कर रहे हो। हमारे गांव में जो साधु आता है वो भिक्षा मांग के खाता है, उसको लोग देते हैं, और जो भिक्षा नहीं मांगता है उसके लिए मैं स्वयं दूध लेके आता हूँ, इसलिए आप ये दूध ले लो और हमारा प्रेम स्वीकार करो। तो माधवेंद्रपुरी ने वो दूध का प्याला लिया, मटका लिया। तो बालक ने कहा कि इस मटके को लेने के लिए मैं दौड़ के आऊंगा, आई विल कम बैक अगेन टेक द पॉट। और वो बच्चा निकल गया। फिर माधवेंद्रपुरी ने उस मटके से दूध को पिया और जब वो दूध पिया तो माधवेंद्र पुरी को बहुत 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 आनंद का अनुभव हुआ। शरीर के बाल खड़े हो गए, उसके रोमांच हो गए, कंठ गदगद हो गया, आंखों से अश्रू आए, हृदय में प्रेम जागृत हो गया। तब वो समझ गए कि वो माधव कृष्ण भगवान थे। स्वयं कृष्ण आकर मुझे दूध देने गए, मैं पहचान नहीं पाया उनको, बड़ा दुख किया उन्होंने। रात भर होते रहे कि अरे मेरे विभागी, मैंने भगवान से सेवा लिया, मैंने भिक्षा नहीं मांगी इसलिए भगवान ने आके मुझे दूध दिलाया, हाँ मैंने भगवान से सेवा लिया, इसलिए बहुत दुख हुआ उनको। आनंद भी हुआ बहुत दूध पी के, और दुख भी हुआ बहुत। रात भर वो सो नहीं पाए दुख की वजह से। फिर 4 बजे समय सुबह सुबह उनको थोड़ा नींद लगा, झपकी लगी, झपकी स्मॉल नैप एट 4 AM इन द मॉर्निंग। तभी भगवान उसके स्वप्न में आए उसी बालक के रूप में। उन्होंने कहा मैं गोपाल हूं, मैंने ही आपको दूध दिलाया था, मैं इस पत्थर के अंदर फंसा हूं, इधर मुझे इस पत्थर से बाहर निकालो। और स्वप्न में भगवान ने हाथ पकड़ के माधवेंद्र पुरी को उस जगह तक लेके गए और दिखाया कि मैं यहां पर, वो जगह थोड़ा आगे है, हम गांव से आए ना, बीच में रास्ता गांव निकला, बहुत सारा गांव घर थे बाजू में, वो गांव का नाम है अनियोर, जहां पर भगवान ने खड़ा होकर भगवान ने चिल्लाया था अनियोर अनियोर और दो और दो। वो अनियोर गांव में स्वप्न में गोपाल जी माधवेंद्र पुरी को लेके जाते हैं और दिखाते हैं इस जगह पर मैं हूं, मुझे खोद के निकालो। तो माधवेंद्र पुरी कुछ ही मिनट के नींद से बात तुरंत उठ गए और कहा मैं अभी रोऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी सेवा मिली है ना, तो मेरा रोना बाद में, अभी सेवा मिली, सेवा पहले करनी चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी तुरंत सुबह उठे, ब्रजवासियों को उन्हें इकट्ठा किया और सामान लेकर औजार लेकर वो चले गए वहां पर। और बड़ी सावधानी से बड़ी कोमलता से उन्होंने वहां खुदाई किया, उसमें से बहुत सुंदर गोपाल जी का मूर्ति तैयार हो गया, प्रकट हो गया। तो गोपाल जी की मूर्ति को माधवेंद्र पुरी ने वहां पर स्थापन किया भगवान की इच्छा के अनुसार, क्योंकि भगवान ने कहा था मुझे वहां से निकाल के गिरिराज के ऊपर स्थापन करना, नहीं तो वो गिरिराज के ऊपर चढ़ते नहीं कभी, लेकिन भगवान ने आदेश दिया था मुझे स्थापन करो, इसलिए वो वहां पर चढ़े और गोपाल जी की मूर्ति को बड़ी शान से उन्होंने वहां पर स्थापन किया। और जैसे गोपाल जी के लिए भगवान के समय पे 56 भोग अन्नकूट का उत्सव मनाया गया था ना, गोवर्धन पूजा का, वैसे उन्होंने दोबारा उत्सव मनाया, पहाड़ के पहाड़ बनाकर भगवान को अर्पण किया। उन्होंने पूरा ब्रज के ब्रजवासी आ गए कि गोपाल जी प्रकट हो गए, उनको देखने के लिए सब लोग आ गए, सब लोग ने वहां पर भोग लगाया उनको। उसके बाद में कई महीने तक एक एक गांव ने स्पॉन्सर किया 56 भोग अन्नकूट, फॉर मेनी मंथ्स ईच विलेज स्पॉन्सर्ड अन्नकूट। तो कई महीने अन्नकूट का उत्सव चलता रहा डेली 56 भोग। उसके बाद दोबारा भगवान स्वप्न में आए और माधवेंद्र पुरी को बताया कि मैं बहुत समय जमीन के नीचे था, इसलिए मेरा शरीर जो है वो गर्म हो गया है, बहुत जो बहुत जलन हो रही है, मेरे ऊपर चंदन लगाने की जरूरत है, इसलिए अभी आप उत्तर की ओर जाओ और मलय पर्वत से चंदन को इकट्ठा करो और वो लेके आकर उसको उगाल के उसको लेप करो, मैं इकट्ठा हो जाऊंगा। तो उस समय माधवेंद्र पुरी तुरंत यहां से निकल गए और वो उड़ीसा के आगे गांव है रेमुना, वहां पहुंच गए जहां पर गोपीनाथ का मंदिर है। तो वहां पर पहुंच गए तो वहां पर उन्होंने सुना कि इस गांव में गोपीनाथ जी को बड़ी सुंदर खीर का भोग लगाते हैं, बहुत वर्णन सुना उन्होंने खीर का, खीर बहुत स्वादिष्ट है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो उन्होंने सोचा कि जरा पुजारी को पूछ लो ना कैसे बनाते हैं वो खीर, मामले गोपाल को भी। तो खीर अब तक भोगने लगा था तो उसके पहले ही उन्होंने पुजारी को बोला मैं खीर को चाख सकता हूँ क्या, पुजारी ने कहा कि भोग लगना बाकी है अभी, साथ नहीं बना उसका अभी तक। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि भगवान को भोग लगाने के पहले मैंने खीर की मांग की, बहुत दुख हुआ अपने आप में। और वो दूर जाकर गांव छोड़कर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे कि मैंने कितना अपराध किया, भगवान को भोग लगाने के पहले खीर खाने का इच्छा किया था। यहां पर क्या हुआ, पुजारी ने भगवान को खीर का भोग लगाया, नैवेद्य लगाया भगवान को और पुजारी ने पर्दा बंद किया, फिर पर्दा खोला और बहुत सारे मटके थे खीर के, वो मटके निकाल के रख दिया बाजू में। और रात को भगवान को शहर कराया, मतलब भगवान को सुला दिया। स्वप्न में पुजारी के गोपीनाथ जी आए और उन्होंने कहा कि मेरे भक्त जो है माधवेंद्रपुरी इस गांव में आए हैं, उनके लिए आपने मुझे 11 मटके में खीर अर्पण किया था, आपने गिना नहीं उसको, आपने 10 ही मटका निकाला है। एक मटका मैंने पीछे छुपा के रखा है मेरे पैर के बाजू में, वो मटका आप जाके माधवेंद्रपुरी को देके आओ। ऐसे भगवान ने स्वयं पुजारी को स्वप्न दिया। स्वप्न से उठते ही पुजारी बहुत आनंद से मशहूर हुए, हमारे गांव में वो कौन सा भक्त आया है जो हम जानते नहीं है, लेकिन भगवान ने मुझे स्वप्न में आके आदेश दिया है कि माधवेंद्रपुरी हमारे गांव में आए हैं, उनके लिए मैंने खीर छुपाया है। ऐसा कितना महान भक्त होगा वो, इसके लिए स्वयं भगवान ने खीर छुपा के रखा है। तो वो सब खीर लेके गांव गांव में जाने लगा, मतलब यहां से, अरे माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, भगवान ने आपके लिए खीर चुरा के रखा है, वो मैं देने के लिए आ रहा हूँ। तो दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए मिले वो माधवेंद्रपुरी, तो उसके पास में अगर माधवेंद्रपुरी आप ही हो, आप इतने महान भक्त हो, मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करो, आपके लिए साक्षात गोपीनाथ ने एक मटका खीर छुपा के रखा है और आपको पहुंचाने का आदेश दिया है मुझे, प्लीज ये खीर ले लो आप, भगवान की इच्छा पूर्ण करो। माधवेंद्रपुरी भाव से गदगद हो गए, इमोशन, और माधवेंद्रपुरी ने वो खीर खाया, पूरा चाट चाट के खाया। जो मटका था ना वो रोज एक टुकड़ा खाया उन्होंने, कई दिन तक मटका भी संभाल के रखा और रोज टुकड़ा निकाल निकाल कर निकाल निकाल कर पूरा मटका भी खाया उन्होंने। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से एक बार उनको दूध पिलाया, एक बार खीर पिलाया। देखो आप, वे महान भक्त थे माधवेंद्रपुरी। तो फिर माधवेंद्रपुरी को भगवान ने दोबारा स्वप्न दिया, तीसरी बार उन्होंने कहा कि आपने चंदन भी इकट्ठा किया है और वो इतना भारी है कि कई लोग उसको उठा के चलेंगे अभी गोवर्धन तक। रेगुना किधर है, गोरिसा में है और ये वृंदावन में है, तो मैं और गोपीनाथ जी एक ही हैं, मैं गोपाल हूं और गोपीनाथ जी हैं, आप वो चंदन जो है उसको उगाल के गोपीनाथ जी को लगा देना, वो मुझे यहाँ पर ठंडक मिलेगी। तो कई दिन तक रेगुना के जब निवासी हैं वो सब भक्त लोगों ने चंदन घिसा, कई दिन तक घिसा और रोज लगाते थे भगवान को, पूरा चंदन खत्म कर दिया, कई टन था वो चंदन, मेनी मेनी टन चंदन सैंडलवुड, उसको किस किस के। फिर माधवेंद्रपुरी ने भगवान चंदन लगाया और फिर वो लौट गया। वो माधवेंद्रपुरी ने यहाँ पर आकर वो जो राधा कुंड है उसके किनारे बैठ के भजन किया है, वहां पर एक जगह है उसका नाम माधवेंद्रपुरी बैठापुर, वहां पर माधवेंद्रपुरी ने भजन किया है। और ईश्वरपुरी इनके शिष्य हैं, इन्होंने मरते दम तक माधवेंद्रपुरी का सेवा किया, इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान को दीक्षा देने के योग्य बन गए। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में पहली बार आए मथुरा में तो एक ब्राह्मण से मिले, सनोडिया ब्राह्मण, आपको सुनाया था प्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु विजिट वृंदावन, डिडी टेल द स्टोरी ऑर नॉट, नहीं सुना रामचरण प्रभु ने। एनीवे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए तो मथुरा में प्रवेश करते ही मथुरा का नाम सुनते ही बेहोश हो गए, जब उठ गए तो उन्होंने कीर्तन शुरू किया, तो उस कीर्तन में एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कीर्तन में, महाप्रभु देखते रह गए उसको, अरे तो विशेष नृत्य कर रहा है, ऐसा सुंदर प्रेम मैंने कभी देखा नहीं था। तो कीर्तन रुकाया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा मैं सनोडिया ब्राह्मण हूं, मेरी जाति जो है वो वैश्य और शूद्रों का ब्राह्मण काम करते हैं, पुरोहित काम करते हैं, वैसे मैं निचली जाति का ब्राह्मण हूं, आई एम नॉट सर्वे क्षत्रिय ब्राह्मणस, आई एम सर्वे ओनली शूद्र क्षत्रिय वैश्य। और बोलते और आपका परिचय दो, आपका नृत्य बड़ा विशेष था। तो वो कहते हैं कि मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूं, तो माधवेंद्रपुरी वृंदावन में आए थे तो मेरा उनका परिचय हुआ और मैंने उनसे अनुग्रह ग्रहण किया, हाँ इसीलिए आपका नृत्य में कुछ विशेष बात थी, और महाप्रभु चैतन्य ने उनको दंडवत प्रणाम किया। तो ब्राह्मण को बड़ा संकोच हो गया, अरे आप सन्यासी हो, मैं गृहस्थ हूं। तो ब्राह्मण को समझ नहीं आया कि ये मुझे तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो बल्लभ भद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ में थे, उन्होंने बताया कि इनके गुरु ईश्वरपुरी हैं, जो आपके गुरु भाई हैं, तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, इसलिए वो आपको भी गुरु भाई की तरह मान रहे हैं, क्योंकि आप उनके गुरु भाई हो, इसलिए भगवान होते हुए भी वो आपको नम्रत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आपके गुरु और उनके गुरु के गुरु एक ही हैं। इस तरह से माधवेंद्रपुरी एक विशेष भक्त थे भगवान के। उन्होंने ही सबसे पहले ब्रज के अंदर राधा रानी का तत्व को प्रोड्यूस किया। ही इज द ओनली वन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द डीटी ऑफ राधा रानी एंड द प्रिंसिपल ऑफ राधा तत्व इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। उसके पहले के भगवान की सेवा करते, राधा रानी का जो प्रिंसिपल है, राधा रानी को उन्होंने भगवान के साथ में जोड़ दिया, और राधा रानी का जो प्रेम है वो जगह जग के लिए प्रकट किया, विश्व के लिए। जैसे माधवेंद्रपुरी की यहाँ पर कथा है, और यहाँ पर गोविंद कुंड आपके सामने है, सब लोग गोविंद कुंड का आचमन कीजिए, और कुसुम सरोवर की कहानी बताना आपको रह गया ना। ओके, हरे कृष्ण। इतना सुंदर वातावरण देखा यहाँ पर, इतना सुंदर कुंड है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड में स्नान करने से भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर के हर एक स्थान की महिमा एक ही है, पाप नष्ट हो जाते हैं और प्रेम की प्राप्ति होती है। ब्रज धाम पूरा ऐसा है, पूरा कंप्लीट। यहाँ पर भी आओ, यहाँ पर ब्रज को भी स्पर्श करोगे ना तो वही लाभ है, क्योंकि यहाँ पर अनंत संत लोग चले हैं, भगवान चले हैं, ग्वाल बाल चले हैं, गाय चली है, सखियां चली है, सबके चरणों की रज है। यहाँ पर मक्खन की तरह बुलाया, उसको भी उठा के सर पर लगाओगे ना तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। देवी देवताओं को भी ये रज प्राप्त नहीं होती है, इसका एक कल प्राप्त नहीं होता है। ये बड़ी भाग्यवान जगह है, कुछ समय यहाँ पर बिताओ, आराम से बैठकर भजन करो, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो कुसुम सरोवर जो है ये भी गिरिराज के घेरे में आता है, वो कुसुम वन के अंदर आता है। जैसे था ना मॉर्निंग में प्रेम सरोवर वन में था, प्रेम वन में, उस तरह से कुसुम सरोवर जो है ये कुसुम वन में आता है, जहां पर राधा रानी की सहेली मिलकर कृष्ण के लिए फूल बिनते थे। वहां पर देश टू गो टू पिक फ्लावर्स फ्रॉम देयर, फेमस फॉर पिकिंग फ्लावर्स। राधा रानी और गोपियां बड़े प्रेम से वहां पर भगवान को ध्यान में रखते हुए फूल बिन रही थी, सब लोग मग्न हो गए थे। अलग प्रकार के सुगंधित, अलग प्रकार के रंगीन रंग बिरंगी फूल जो है वो सब सखियां बिन रही थी। उतने में वहां से माली आता है, जोर जोर डंडा बजाते हुए माली वहां पर आता है। हरे कृष्ण, मैं आपको ही कर रहा हूं। तो माली आता है तो सब सखियां भाग जाती है, अपना अपना फूल लेकर भाग जाती है, कुछ फूल गिर जाते हैं, छोड़ के भाग जाती है, और कहती है राधा रानी भागो भागो माली आ रहा है। राधा रानी एकदम मग्न होकर किसी घने बुश के अंदर फूल बिन रही थी। शी वॉज इन साइड सम थिक बुश, पिछली दिन रियलाइज्ड व्हेन शी वॉज पिकिंग अप फ्लावर्स। लेकिन जब माली आने की आवाज आई, सखियां पुकारने लगी, तो वो जोरदार कोशिश करने लगी यहां से निकलना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से फंस गई थी वहां पर कि सब उसका कपड़ा वपड़ा सब कांटों में फंस गया था। तो यहां से कांटा पुका निकालते थे यहां अटक जाता है, यहां निकालते थे यहां अटक जाता है। बहुत कोशिश करती है और माली पास पास आता है, डंडे को पटका पटका कर, डंडा जमीन पर मार मार कर वो पास में आता है, और सखियों की आवाज दूर जाती है, सखियां दूर से पुकारती है राधा रानी भागो भागो, मतलब वो भाग रहे हैं दूर जा रहे हैं दूर, उनकी आवाज भी कम कम होती जा रही है, और माली के आने की आवाज जो है ज्यादा हो रही है, पास पास आ रही है। समझे आप, माली इज कमिंग क्लोजर, गोपी आर गोइंग फार, राधा रानी अटकी हुई है। तो जब वो प्रयास करती है बहुत सारा अपने आप को निकालने का, वहां से सारे उसके फूल जो है मट्टी में गिर जाते हैं, फिर भी उसके कपड़े जो है वो अटके हुए निकलते नहीं उसमें से। तो माली जाके उस सामने खड़ा रहता है, डंडा पकड़ बड़ी बड़ी आंखें कर कमर में हाथ में खड़ा रहता, दंड देगा उसको, अरेस्ट करेगा। तो राधा रानी बहुत डर जाती है, उसके सर में से पसीना आने लगता है, कांपने लगती है। उतने में माली हंस देता है, पगड़ी निकालता है तो उसके अंदर मोर पंख रहता है। तो राधा रानी कहते ओह आप हो, मैं तो डर गई थी कौन आया, आज मुझे अरेस्ट किया जाएगा, मैं बहुत डर गई थी, तुमने आज ऐसा क्यों किया, सबको भगा दिया और मुझे को अकेले में यहाँ पर दर्शन दिया। तो भगवान ने कहा कि मुझे आज आपको अकेले में मिलने का दिल था, इसलिए सबको मैंने भगा दिया। ये बहुत अच्छा तरीका था सबको भगाने का, सब थकिया भाग गई है, अभी तुम और हम खाली बस। तो कहते अभी तो फूल सब गिर गए, डर के मारे, आपके डर से मारे सब फूल गिर गए, मैं तो अटक गई यहाँ से। भगवान ने उसको छुड़ा दिया, वहां से छुड़ा लिया और फूल भी लिए और पूछा कि आप रोज क्या करते हो फूल लेके यहाँ से। बोले हम फूल लेके जमुना जी पहुंचते हैं और जमुना में फूल को धोते हैं, फिर आपके लिए माला बनाते हैं, फिर आपको अर्पण करते हैं। तो चलो जमुना जाएंगे। अरे आप यहाँ अकेले कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, खुले आम आपके साथ में अकेले जल नहीं सकते हम, तो कोई बात नहीं जमुना जी को ही बुला लेते। भगवान ने अपने पैर से गड्ढा बनाया और जमुना जी को बोला आ जाओ अपना पानी डाल दो। तो जमुना जी ने बहुत दूर से आकर वहां पर जल दिया पूरा और उसके द्वारा क्या बना, कुसुम सरोवर, पुष्प सरोवर बना। फिर वो बनने के बाद में भगवान ने और राधा रानी ने अपने हाथों से वो सब फूल को धोया अच्छी तरह से और राधा रानी ने अपने हाथ से फूल की माला बनाने के बदले में भगवान ने अपने हाथ से राधा रानी के बालों का फूलों से श्रृंगार किया। उसी का दर्शन उस मंदिर में है, देखा ना, कृष्ण भगवान हाथ में कंघी लेकर राधा रानी के बाल संवार रहे हैं और उसमें फूल लगा रहे हैं और राधा रानी आईना लेके बैठी है, किसको देख रही है, अपने आप को नहीं देख रही है, कृष्ण भगवान को देख रही है जो उनके बाल संवार रहे हैं। ये सुंदर भाव वहां पर श्री जी के मंदिर में भी एक फोटोग्राफ है राधा रानी के मूर्ति के साइड में, वहां पर भी बड़े लंबे बाल है राधा रानी के, उसको कृष्ण भगवान संवार रहे हैं और सजा रहे हैं। उसी कुसुम सरोवर के किनारे में नारद मुनि आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। वो कथा ऐसी है कि भगवान राधा रानी का जब जन्म हुआ रावल में, तो रावल में गए राधा रानी का दर्शन करने के लिए। उनका दर्शन किया उन्होंने, राधा रानी ने वहां पर वो 16 साल की कन्या का दर्शन दिया, किशोरी का दर्शन दिया। फिर नारद मुनि बेहोश हो गए, फिर जगे, फिर बेहोश हो गए। छोटी बालिका 16 साल का दर्शन दिया उन्होंने, सबको भेज दिया बाहर उन्होंने अपनी बड़ी ट्रिक से, और अकेले में उन्होंने दर्शन दिया राधा रानी का। फिर इच्छा प्रकट की कि मुझे आपके अष्ट सखी के साथ दर्शन करना है। राधा रानी कहती है कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ, वहां पर मैं आपको दर्शन दूंगी। तो कुसुम सरोवर पे नारद मुनि आए हैं और वहां पर कुसुम वन के अंदर एक वन है अशोक वन, अशोक के वृक्ष है बहुत सारे, उस पर उसके नीचे बैठकर नारद मुनि ध्यान कर रहे थे राधा रानी के ऊपर। तो ध्यान में क्या दर्शन दिया उन्होंने, क्या दर्शन पाया कि ध्यान के अंदर सारे अशोक वृक्ष जो हैं वो गोपियां बनकर रासलीला में प्रवेश कर रहे थे। यहां तक कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वो पेड़ भी गोपी बनकर श्रृंगार करके रास में प्रवेश कर रहे हैं। वो आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि कमल कुसुम सरोवर में एक बड़ा कमल है, उस कमल के अनेक पंखुड़ियां हैं, कमल के बीच में राधा कृष्ण बैठे हुए हैं, पंखुड़ियों पर सखियां खड़ी हैं, कोई वाद्य बजा रही है, कोई गीत गा रही है, कोई नृत्य कर रही है, ठाकुर जी को रिझा रही है, राधा कृष्ण को प्रेम से सेवा कर रही है। तो नारद मुनि को मिलने के लिए वहां पर वृंदा देवी आती है, वृंदा देवी नारद मुनि का हाथ पकड़ के कुसुम सरोवर के दक्षिण कोने में उनको स्नान कराती है। स्नान करने के बाद क्या होता है, जो आम तौर पे होता है, नारद मुनि गोपी बन गए, नारद ही या गोपी, उस नारद या गोपी का वृंदा देवी ने श्रृंगार किया है बहुत सुंदर। श्रृंगार करके नारद मुनि का, नारद या गोपी का हाथ पकड़ के उसको उस कमल के बीच में लेके जाती है वृंदा देवी और नारद मुनि के द्वारा चामर सेवा करके भगवान। बहुत देर तक उस कमल के मध्य में जाकर नारद जी गोपी राधा और कृष्ण की सेवा करती है। तो उस समय उनको अष्ट सखियों के साथ में दर्शन होता है। तो राधा रानी भगवान को, नारद मुनि को नारद जी गोपी के रूप में आदेश देती है, आप यही रहो और हमारी भक्ति के भक्ति में विग्रहों की पूजा कैसे की जाती है उसके बारे में ग्रंथ लिखो। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे शाप है दर्शन मुनि का कि 3 दिन के ऊपर मैं रह सकता नहीं कई जगह पर। तो राधा रानी कहती है कि वो शाप भौतिक जगत में अप्लीकेबल है, ये मेरा घर है। ये नारद मुनि अब मत समझना कि ये भौतिक दुनिया है, ये मेरा चिरंतन धाम है, ये नष्ट होने वाला नहीं है। वो शाप आपके लिए उस जगह पर है जो नष्ट होने वाला भौतिक दुनिया है, इसलिए आप निश्चित होकर मेरे धाम में रहो और मैंने जो बताया वो सेवा करो। नारद मुनि को फिर वृंदा देवी कुसुम सरोवर के दक्षिण कोने में लेके आती है, दोबारा स्नान कराती है, फिर उनको नारद मुनि का शरीर प्राप्त होता है और नाचते हुए गाते हुए वो वहीं पर आके बसते हैं। उसके पास में ही एक वन है, उसका नाम है नारद वन, वहां पर नारद कुंड है। उसके किनारे में भजन करते हुए, रोते हुए, आंख में से अश्रु लाते हुए नारद मुनि लिखते हैं नारद पंचरात्र की विधि सूत्र, उस ग्रंथ का लेखन उन्होंने वहीं पर किया है। कुसुम सरोवर बहुत अद्भुत जगह है। कुसुम सरोवर पे पीछे एक कुंड है, उसका नाम है उद्धव कुंड। उस उद्धव कुंड में उद्धव जी महाराज ने तपस्या किया था कि मैं तृण का पत्ता बनूं, टू बिकम ब्लेड ऑफ ग्रास, और वहां पर वो तृण का पत्ता बने हुए हैं, वहां ही रहते हैं तृण के पत्ते के रूप में। क्यों रहते हैं, तो पर्पज है उसका, व्हाई इज स्टेइंग देयर एज अ ब्लेड ऑफ ग्रास। वो जब ब्रज में आए थे ना भगवान का संदेश लेकर, उन्होंने गोपियों का प्रेम देखा तो सब पागल हो गए थे। इतना प्रेम मेरे पास भी नहीं है, मैं तो भगवान के साथ रहता हूँ, लेकिन फिर भगवान का मेरा प्रेम इतना नहीं है जितना गोपियों का है। तो मैं गोपियों के चरणों के रथ चाहता हूँ, इनके चरणों की धूल मिलेगी तो मेरा जीवन धन्य हो सकता है। इसलिए वापस गए द्वारका में पूरा खबर देने के लिए, पूरा रिपोर्ट भगवान को दिया उन्होंने कि कैसे गोपियों ने व्यवहार किया हमारे साथ में, मैं तो दंग रह गया, मैं दोबारा ब्रज में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे ब्रज में जाके तपस्या करनी है कि ताकि मैं तृण का पत्ता बनूं, ताकि मुझे गोपियों के चरणों की रज मिले, क्योंकि मैं ऐसे ही जाकर रज मांगूंगा तो नहीं देंगे मुझे, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, सेनापति हूँ, मेरा शरीर भी आपके जैसा ही है, तो सम्मान के द्वारा संकुचित हो जाएगी। लेकिन अगर मैं तृण का पत्ता बनूंगा तो मेरे ऊपर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो चलती है तृण के पत्ते, मैंने देखा है। इतना बड़ा सेनापति कृष्ण का चचेरा भाई, इतना बड़ा पोजीशन था उसका, इतना बड़ा भक्त था, भगवान के साथ में उठना बैठना खेलना चलना सब करता था। उसने गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए यहां पर आके तपस्या किया और वो तृण का पत्ता बन गया, ब्रेड ऑफ ग्रास, गुलमलता। तो आज भी वो कुसुम सरोवर किनारे उद्धव जी महाराज तृण का पत्ता बन के रह रहे हैं और गोपियों के चरणों की रज ले रहे हैं, इतना सुंदर जगह है। और वहीं पर उद्धव जी महाराज ने कृष्ण के पत्नियों को भागवत सुनाया है, बहुत अद्भुत जगह है वो, बहुत अद्भुत जगह। जब कृष्ण की पत्नियां कृष्ण भगवान जाने के बाद में बहुत रो रही थी तो परीक्षित महाराज और बज्रनाभ उनको कुसुम सरोवर लेके आए थे और भगवान ने कहा था उद्धव जी को कि मेरी पत्नियां आएंगी तो उनको भागवत सुनाना और उनका उद्धार करना। तो उन्होंने कुसुम सरोवर में आकर भगवान के नाम का कीर्तन किया है, हरि नाम संकीर्तन भगवान की पत्नियों ने किया है, प्रेम से किया है। उनके हरिनाम संकीर्तन की वजह से उद्धव जी तृण के पत्ते से रूप से प्रकट हो गए अपने मूल रूप में और सभी भगवान की रानियों को उन्हें दर्शन दिया है। तो एक तो काम है हरिनाम संकीर्तन का, हरिनाम संकीर्तन वहां पर भगवान की पट रानियों ने किया 16108 और उसके प्रभाव से तृण के पत्ते के रूप में से उद्धव जी प्रकट हो गए और वहां पर बैठकर 30 दिन तक उद्धव जी ने श्रीमद् भागवतम कथा किया है और श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनते ही सब रानियों का दुख जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत के श्रवण के रूप में भगवान के संग का अनुभव किया। वो भगवान के विरह का अनुभव कर रहे थे, भगवान चले गए लेकिन भागवत सुनते ही भगवान के उपस्थिति का उन्होंने अनुभव किया। दे एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा थ्रू द वर्ड्स ऑफ भागवतम, इसलिए उनका दुख खत्म हो गया। जैसे ही भागवतम का दशम स्कंद का वर्णन आरंभ हो गया तो भगवान की रानियों ने अपने मूल स्वरूप को दर्शन किया, जो गोलोक वृंदावन में उनका स्वरूप है उसका दर्शन किया। द डिस्क्रिप्शन ऑफ 10th कैंटो, द क्वींस ऑफ कृष्णा सॉ देयर ओरिजिनल फॉर्म्स इन द स्काई एंड एट द एंड ऑफ श्रीमद् भागवतम दे मर्ज्ड विद दैट फॉर्म एंड दे अटेन्ड परफेक्शन एंड दे वेंट बैक टू गॉडहेड। तो भगवान की पत्नियां श्रीमद् भागवतम सुनने के पश्चात गोलोक धाम चली गई। इतना सुंदर जगह है, देखो श्रीमद् भागवत का महात्म्य वहां पर प्रकट होता है, हरिनाम संकीर्तन का महात्म्य प्रकट होता है, उद्धव जी महाराज ने तपस्या वहां पर किया है, नम्रता तपस्या वहां प्रकट होती है, गोपियों का चरम भक्ति का स्थान जो है वो प्रकट होता है, सखियां वहां पर फूल बीनती है, भगवान ने उनका उनके लिए सरोवर बनाया है, कितनी कथा है, नारद ने दर्शन किया है, अद्भुत जगह है वो। उस जगह को बार बार प्रणाम करना चाहिए, यही मन से प्रणाम कीजिए आप कुसुम सरोवर को, जहां पर भगवान ने गोपियों को फूल बीनने की जगह बनाई, भगवान ने राधा रानी के बाल संवारे, हम लोग वहां पर गए, आप लोग सब पहुंचे वहां पर, आगमन किया ना, फिर पानी में गिर गया क्या? नहीं ना। हरे कृष्णा। लास्ट टाइम एक माता जी हमारी ऑरेंज से आई थी, वो सुजान माता जी, शी फेल इन द वॉटर, शी वेंट टू डू आचमन एंड शी स्लिप एंड शी हैड फुल आचमन। Somebody gave her clothes. Suddenly somebody had a spare piece of cloth, you know, full suit was there. She was given that suit. She was very happy. उनको दुख नहीं हुआ कि पानी में गिर गई, बड़ी खुशी में हुई, बड़े खुशी से आकर बताया प्रभु जी मैं आचमन करने गई थी लेकिन मेरा स्नान हो गया। श्री कुसुम सरोवर धाम की, भगवान के धाम में आनंद ही आनंद है, कहीं भी जाओ किसी भी दिशा में जाओ। अभी आप इस दिशा में देखो, गिरिराज जी इज वेरी क्लोज हियर, यू कैन ऑफर योर हार्ट फेल्ट प्रेयर्स टू गिरिराज, गिरिराज गोवर्धन प्लीज प्लीज गिव मी डिवोशन टू कृष्णा, प्लीज गिव मी डिवोशन, आई हैव कम हियर टू बेग फॉर डिवोशन, मैं यहाँ पर भक्ति की भिक्षा मांगने आया हूँ, हे गिरिराज हे गोवर्धन हे हरिदास वर्य, कृपा करके मुझे भक्ति देना, प्रेम देना भगवान का, जैसे आपने भगवान की लीला में हर तरह से सहायता किया है, अपने पत्थरों को मुलायम बनाया है, भगवान को बैठने की जगह दी है, भगवान की गाय को खाने के लिए घास दी है, रत्न दिया है, जड़ी बूटी दिया है, पेड़ दिया है, फल फूल दिया है, छाया दिया है, बैठने का जगह सोने का जगह दिया है, लीला करने का जगह दिया है, आपने गाय चराया अपने ऊपर भगवान का, इतना सेवा किया, हर प्रकार से सेवा किया, आपका जो सेवा भाव है थोड़ा हमको भी देना, हे गिरिराज गोवर्धन हरिदास वर्य प्लीज गिव अस डिवोशन, गिरिराज गोवर्धन की, गोविंद कुंड धाम की, राधा गोविंद भगवान की, राई गौर प्रेमानंदे माधवेंद्र पुरी जी की, गोपाल जी की। एक बात बताना भूल गया कि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे तो उन्होंने गोपाल जी की कथा सुनी थी, तो उनका बहुत दिल हुआ कि उनको गोपाल जी का दर्शन करना चाहिए, लेकिन क्या करें, गोपाल जी की मूर्ति तो गोवर्धन पर्वत पर थी, वो चढ़ने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो भक्त के रूप में आए थे, जब भगवान के रूप में थे तो चढ़कर लीला कर रहे थे, लेकिन जब भक्त के रूप में आए तो थोड़ी चढ़ेंगे वो। तो गोपाल जी के मन में इच्छा हुई कि मेरे भक्त चैतन्य महाप्रभु आए हैं, दर्शन देना चाहिए। तो गोपाल जी ने ऐसा चक्र चलाया कि सब गांव में अफवाह फैलाई कि तुर्की सैनिक आ रहे हैं हमला करने के लिए, ऐसा अफवाह फैला के इधर सब घबराहट हो गए कि अभी गोपाल जी को मंदिर तोड़ने के लिए तुर्की जो मुसलमान सोल्जर है वो आएंगे। तो सभी ब्रजवासी पुरोहितों ने क्या किया, गोपाल जी की मूर्ति उठाई और भाग गए यहाँ से, और कहाँ गए, गांठोली गांव में गए, यहाँ पर एक गांव है 5 किलोमीटर दूर गांठोली दीघ के रास्ते पर, वो गांठोली गांव में राधा कृष्ण एक बार बैठे थे तो पीछे से ललिता देवी ने आकर उनके कपड़ों में गांठ लगा दी, ग्रंथी बंधन कहते हैं उसको, दे टाइड देयर नॉट ऑफ देयर अपर क्लॉथ, सो दे बिकम वेरी शाय इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ललिता देवी टाइड द नॉट, सो उस गांव का नाम पड़ा गांठोली, पहनावली कजरोठा गेंदोवा कोयलो घाट सब उसी पर बने हुए हैं। जब वसुदेव जी भगवान को लेकर जा रहे थे ना जमुना जी में, तो वो जमुना जी में गिरने लगे भगवान, पानी ऊपर 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 आया और एक जगह लिखा गया कि भगवान गिर गए पानी में। तो उसने चिल्लाया कोई लो मेरे लाला गिर रहा है, कोई लो। तो उस घाट का नाम पड़ गया कोई लो घाट। कृष्णा माता जी व्हेन वसुदेव वाज कैरिंग कृष्णा टू जमुना टू गोकुल, जमुना वाटर वाज राइजिंग एंड राइजिंग, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कृष्णा फेल डाउन इन वाटर। तो वसुदेव शाउटिंग somebody pick up my child is fallen down in Hindi, which means koilo, somebody pick up my child. So the ghat is called Koilo Ghat. Lord Bhumi is very fantastic place. Everything is so wonderful here. So nice, so sweet. तो चैतन्य महाप्रभु को खबर मिली कि गोपाल जी को मूर्ति लेकर वो घाटोली गांव गए, तो महाप्रभु जी यहां से भाग के चले गए घाटोली गांव में। वहां पर तीन दिन तक दिन रात उन्होंने कीर्तन किया, दिन रात इतने प्रसन्न हो गए गोपाल जी को देखकर। तीन दिन के बाद में आपको पता चला कि अफवाह थी, कोई सैनिक वैनिक आने वाला नहीं है। तो गोपाल जी को दोबारा वापस लाने का प्लानिंग किया गया। तो वो जुलूस का नेतृत्व चैतन्य महाप्रभु ने किया और गांठोली गांव से नाच करते हुए कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु यहां तक आए, यहां तक व्हाइट बंदे ना उसके नीचे तक आए। फिर ब्रजवासी लोगों ने उनको गोपाल जी को ऊपर स्थापन कर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
इस तरह चैतन्य महाप्रभु जो भक्त के रूप में आए थे उनकी इच्छा श्री गोपाल जी ने पूर्ण कर दी। फिर जब औरंगजेब का हमला हुआ तब गोपाल जी को यहाँ से नाथ द्वार लेके गए। आज यहाँ पर दूसरी मूर्ति है, ओरिजिनल मूर्ति जो है श्रीनाथ जी की गोपाल जी की, वो नाथ द्वार में है। ऐसे ही नाथ द्वार जाने के पहले की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु आए और गए तभी उनको गांठोली गांव ले गए थे ना हम लोग। जब रूप गोस्वामी आए तो उनकी भी इच्छा हुई गोपाल जी का दर्शन करना चाहिए, महाप्रभु जी के गुरु जी के गुरु जी ने स्थापन किया मूर्ति है वो। तो गोपाल जी ने वापस ट्विट किया, वापस कोई सैनिक आएगा ऐसा अफवाह उड़ाया। उस समय ब्रजवासी गोपाल जी को लेकर मथुरा चले गए और वहां 30 दिन रखा उनको। वहां पर रूप गोस्वामी को खबर मिली कि अभी अफवाह की वजह से गोपाल जी को लेकर मथुरा गए हैं, तो सारे गोस्वामी को लेकर सारे कृष्णदास कविराज सबको लेकर रूप गोस्वामी मथुरा गए और एक महीना तक उन्होंने गोपाल जी का सेवा किया और फिर गोपाल जी को वापस गोवर्धन पे लाया गया। और फिर आखिरी बार जब औरंगजेब का 17वीं सदी में 1670 के आसपास जब उन्होंने हमला किया तब जाकर उनको यहाँ से नाथ द्वार दिया राजस्थान में, आज वही पर विराजमान है। तो यहाँ पर दान घाटी में जो मूर्ति है गोवर्धन विराज की, उसका श्रृंगार जैसे होता है उसी रंग का श्रृंगार रोज नाथ द्वार में होता है बिना किसी टेलीफोन के, अपने आप ही जो श्रृंगार की प्रेरणा यहाँ पुरोहितों को होती है, अल्टर इंग्लिश ऑल्टर वाली जो श्रृंगार की प्रेरणा होती है पुरोहितों को यहाँ पर, वही प्रेरणा वहां पर पुरोहितों को होती है और वो सेम श्रृंगार करते हैं। लोगों ने दर्शन किया है एवरी डे द डीटी ऑफ गोपाल जी वन ऑफ द डीटी ऑफ गिरिराज एट दान घाटी, वॉट एवर कलर ऑफ श्रृंगार द ड्रेसिंग दे डू द सेम ड्रेसिंग इज डन फॉर श्रीनाथ जी इन नाथ द्वारा and people have witnessed that they have come in the morning here and they have ran by flight there and they have seen that the same dressing same ornaments are worn by the pujaris here and there in the both the same places without telephone calls, without internet, without email, photographs being transferred from here to there, no communication, it's hard communication by inspiration only. Badi adbhut jagah hai ye Vrindavan mein. To ye abhi aise kehte hain ki रोज एक सरसों के दाने के साइज से गिरिराज जी जमीन में धस रहे हैं, सिंकिंग डाउन एवरी डे बाय द कर्स ऑफ पुलत्स्य मुनि। और हमने भी अभी 25 साल के बाद में देखा तो थोड़ा सा कम हो गया वो, इट्स अ फैक्ट। जब ये पूरा जमीन में चला जाएगा तभी घोर कलयुग शुरू हो जाएगा, तब गोवर्धन यहां पर नहीं रहेंगे केवल जमीन रहेगी, गोवर्धन मस्ट हैव पूरा गॉन अंडर द ग्राउंड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज डू नॉट वेट टिल दैट टाइम टू विटनेस दैट बैड सीन दैट गोवर्धन विल नॉट बी हियर, बिफोर दैट प्लीज गो बैक टू गॉडहेड, उसके पहले भगवान के धाम में चले जाना। क्योंकि अभी मुझे पुरण सिंह है क्या पर, हाँ पुरण सिंह में बात कर रहा था कि कलयुग के दो भाग होते हैं, एक है स्वर्ण युग द गोल्डन एज ऑफ कलयुग और एक है घोर कलयुग द ड्रेडली पार्ट ऑफ कलयुग। और स्वर्ण युग का मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बाद के 10,000 साल जो है उसको कलयुग का स्वर्ण युग कहा गया है। द गोल्डन एज ऑफ कलयुग इज डिस्क्राइब्ड एज द 10,000 years आफ्टर द बर्थ ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को बर्थ इन 1486, तो विच ईयर विल बी देयर आफ्टर 10,000 years? 1486 इंटू 10,000 इज इक्वल टू हाउ मच? 1486 3 zeros after that. Is that right? Yeah. No. 1 more zero. 4 zeros. 1486 plus 4 zeros on that. उस साल में स्वर्ण युग खत्म हो जाएगा और उसके बाद घोर कलयुग शुरू होगा। और चैतन्य महाप्रभु ने आपको वरदान दिया है इस स्वर्ण युग के अंदर जो हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेगा वो मेरे धाम में पहुंच जाएगा। और जो आलस्य करेगा 10,000 साल तक बार बार जन्म लेने के बाद भी हरि नाम का सहारा नहीं लेगा वो घोर कलयुग में जाएगा। और घोर कलयुग का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता कलयुग में बैठकर, बहुत भयंकर है, बहुत ही भयंकर। घोर कलयुग में जमीन से खाद्य नहीं आएगा, पेड़ पर फूल नहीं आएंगे, फल नहीं आएंगे, सब सैनिक सब जो भक्त है वो डर के मारे गुफा में रहेंगे, इंसान इंसान को मार के खाएगा क्योंकि कोई खाना नहीं बचेगा, धान्य खत्म हो जाएगा, सब जानवर को मार के इंसान खाएगा पेट पालने के लिए। कहने दो उसको छोड़ दो क्या, वेरी पेनफुल डिटेल द स्टोरी ऑफ घोर कलयुग का। आपके लिए इतना ही मैसेज है, दर्शन करो गिरिराज का, प्रार्थना करो और यहां से चले जाओ, मतलब यहां से घर नहीं जाओ, इस पृथ्वी से दो लोग धाम चले जाओ भगवान के धाम में। बार बार बताओ यहाँ पर चढ़ने के लिए, मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मैं वहां पर आऊंगा उस समय तो क्या होगा, तो डिफिकल्ट, ऐसे बैठ के रखा नहीं कर सकते हैं। सब लोग भूखे रहेंगे और देखते रहेंगे किसको काट के खाऊं। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर देयर हैज़ बीन कथा एंड एवरीबॉडी लुकिंग एट वन अनदर, हु शुड आई ईट, देयर आर हंग्री, देयर इज नो फूड अवेलेबल। सो बाय द वे देयर मे नॉट बी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कथा दैट टाइम, कथा इज ओनली नाउ पॉसिबल। Take the benefit and go back to Godhead. Don't wait till that time. Don't wait till that time also. In this lifetime only, go back to Godhead. This is the opportunity given to all of you. In this very lifetime, you all have to go back to Godhead. Not by your efforts, by the mercy of the Lord. Please make your efforts very hard and do not try to come back again. Hare Krishna. And I pray to Guriraj Govardhan that by his mercy, all of you will go back to Godhead in this time.
Hare Krishna.
Hare Krishna.